रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल, शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल, शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल।
आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है, वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें तपस्वी बनना है, पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीजगी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीजगी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है, हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें योगी बनना है, संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पवित्र बनना है, सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का ये खजाना है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें क्रांति लानी है, वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय।
ओम शांति। कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, ये चिराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है। कोई हो सफर में जो साथ दे, मैं रुकूं जहां कोई हाथ दे, मेरी मंजिलें अभी दूर है, मुझे रास्तों की तलाश है। कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, ये चिराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है। हादसे और मुश्किलें, ये क्या है? चिराग, ये चिराग है मेरी राह के। मुझे मंजिलों की तलाश है। चाहे संसार का मार्ग हो या अध्यात्म का, मुश्किलें दोनों तरफ है, परंतु उन मुश्किलों को उन परिस्थितियों को, उन विघ्नों को, उन समस्याओं को, उन चुनौतियों को क्या समझना है, रास्तों के ये क्या है, चिराग यही तो राह दिखा रहे हैं। बिना निंदा सुने महान भी नहीं बना जाता। निंदा भी क्या है, चिराग। ये चिराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है। महाभारत में दिखाया है भीष्म प्राणों बाणों की शैया में लेटे हुए अंतिम सांसें गिन रहे हैं, अब शरीर छोड़ने वाले हैं, युद्ध पूरा हो चुका है, सारे कौरव मारे जा चुके हैं, पांडव श्री कृष्ण के साथ वहां खड़े हैं और भीष्म रो रहे हैं। अर्जुन पूछता है कृष्ण से, इन्हें मृत्यु का भय है, जीवन की अभी भी जीवेशना छूटी नहीं है, ये रो रहे हैं मृत्यु के भय से। अर्जुन की ये बात कृष्ण भीष्म से पूछते हैं, तब भीष्म कहते हैं कि ये तुम भी जानते हो कि मैं क्यों रो रहा हूं। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं मरने वाला हूं, इसलिए रो रहा हूं कि मैं ये देख रहा हूं कि स्वयं भगवान पांडवों के निरंतर साथ था, फिर भी पांडवों का जीवन कभी दुखों से मुक्त रहा ही नहीं। स्वयं भगवान पांडवों के पल पल समीप था, परंतु फिर भी पांडवों को सभी विघ्नों का सामना करना पड़ा, परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एक पल भी पांडवों का सुख से गया क्या? जब से पांडवों का जीवन देखो बचपन से, संकट ही संकट, दुख ही दुख, बचपन से ही दुर्योधन षड्यंत्र ही षड्यंत्र किए जा रहा है, लाक्षाग्रह से लेके तो सारे कुछ। परंतु उन्हीं परिस्थितियों की वजह से उस भगवान की याद निरंतर उन पांडवों को है। तो ये ना समझ लेना कि भगवान मिला तो सब संकट समाप्त। भीष्म कहता है मैं ये देखकर असर रो रहा हूं और मुझे आश्चर्य भी हो रहा है तेरी लीला पर। कैसी ये लीला है, अद्भुत, कि पग पग पर भगवान जिन पांडवों के साथ है उनका जीवन भी संकटों से मुक्त नहीं है। भारत में संत महात्मा कितने पुरुष हुए हैं और भक्ति में गायन है, सभी को भगवान के दर्शन हुए, पर क्या दर्शन होने के बाद उनके जो कर्म थे वो तो वही रहे। मीरा को कृष्ण के दर्शन हुए, परंतु वो चाहती वही रही, उसके जीवन में जो कुछ समस्याएं थी वो वैसी है। तो ये चिराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है, कोई हो सफर में जो साथ दे, मैं रुकूं जहां कोई हाथ दे, मेरी मंजिलें अभी दूर है, मुझे रास्तों की तलाश है, मुझे रास्तों की आवाज। तो इस मार्ग में संकट है, थोड़ा सा कम तो करे। तो इस मार्ग में ये प्रार्थना ना करना भगवान से कि मेरे सारे दुख, मेरे सारे विघ्न, मेरी सारी परिस्थितियां, मेरे सारे सम पेपर्स दूर कर दे, ये प्रार्थना नहीं हो। फिर प्रार्थना क्या हो? धन्यवाद की प्रार्थना, क्योंकि ये संकट ही हमें निखार रहे हैं, ये अनिर्णय की अवस्था ही वरदान है, क्योंकि इसी में हमारी परख शक्ति क्या हो रही है? शाप। इसलिए ये राजयोग भक्ति मार्ग ना बन जाए, ज्ञानियों के शिविर में छिपे हुए भक्त बैठे हैं, भक्ति के संस्कार लंबे समय के मांगने के प्रार्थना के, इसलिए हे प्रभु मुझे विघ्नों से मुक्त कर दे, मेरे सारे दुख हर ले, सारी समस्याओं को हटा दे, ये प्रार्थना ना हो, इसके लिए योग ना हो। बारिश नहीं है तो बारिश ला ले, और बारिश आ गई तो अब बारिश रोक दे, खेत में फसल आ जाए, मेरे शरीर के रोग चले जाए, बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए, खांसी चली जाए, कोई जमीन मिल जाए जहां पर सेंटर हम बना ले, कोई सहयोगी मिला दे, ये सब भक्ति मार्ग है, इसमें मांगना है। ये चिराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है, ये चिराग है, ये संकट, ये मुश्किल, ये परिस्थितियां, ये विघ्न, ये निंदा, ये निंदा ही तो अंतर्मुखी कर रही है, ये निंदा ही आत्ममुखी सत्यमुखी बना रही है। मेरी निंदा बंद हो जाए प्रभु, सारी मेरी तारीफ करे, ऐसा ऐसी प्रार्थना न करना। सबसे संतुष्ट हूं परंतु एक छोड़कर उसका कुछ करो, हे बाबा इसकी ट्रांसफर करा दो कहीं और। ये प्रार्थना ना करना। बाबा से बातें अर्थात धन्यवाद, जो दिया है उसके लिए अहोभाव, सब कुछ प्राप्त है, कुछ नहीं चाहिए, जो दिया है जितना चाहिए था उससे भी बहुत अधिक है। एक विदेश की माँ अपने बेटे के साथ समुद्र तट पर क्रीड़ा कर रही है, समुद्र की लहरें उठ रही है, लहरें आ रही है जा रही है, और अचानक एक बहुत विशाल तरंग आती है, लहर जो उन दोनों के ऊपर उठती है और फिर चली जाती है, और माँ देखती है जब लहर चली गई बेटा गायब है। वो सब तरफ देखती है कहीं नहीं है, अर्थात वो समुद्र उस बेटे को ले चला गया। हताश होती है, आलाप करती है, दुख करती है, और अपने पैरों के बल गिरती है, घुटनों के बल, और आकाश में देखते हुए भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु कृपा कर, दया कर, तू दया सिंधु है, रहम दिल है, मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दे, अगर तुमने बेटा वापस लौटा दो दिया तो मैं डेली चर्च जाया करूंगी, सिगरेट पीना छोड़ दूंगी, वफादार रहूंगी। हे प्रभु, मेरा बेटा मुझे लौटा दे। मैं अपने पास जितने पैसे हैं नियमित रूप से गरीबों को दान करूंगी, सब कुछ करूंगी। रेगुलर धर्मशास्त्र बाइबल पढ़ूंगी, तो जो कहेगा वो मैं करूंगी। हे प्रभु, पर मेरा बेटा मुझे लौटा दे। आर्त पुकार निकलती है हृदय से और बेहोश सी हो जाती है। एक दूसरी लहर उठती है और लहर जाती है तो देखता है उसका बेटा सामने खड़ा है, आ रहा है। वो एकदम उसे छाती से पकड़ लेती है, परंतु फिर ऊपर देखती है। बेटा तो मिल गया, पर हे प्रभु उसकी हैट किधर है? बट वेयर इज द हैट? दुख तो अभी भी है ही, पहले बेटा खोने का दुख था और अब हैट नहीं है। बेटा तो मिल गया, पर उसकी टोपी किधर है? थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, अहोभाव, कृतज्ञता मिसिंग है। और हमारा मन किससे भरा हुआ है? कंप्लेंट से, जो है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये दे दे और वो दे दे। कि मेरे इतनी, आप किसी भी संत के जीवन को स्टडी करो, कोई भी संत, लोगों ने दिन रात उसका विरोध किया है, उसको सताया है, बहुत दुख दिया है। और उसका कारण क्या था? क्योंकि वो दुनिया से अलग थे। वो विरोध का कारण, दुनिया से अलग थे और वो नहीं करते जो दुनिया वाले करते थे। उस भेड़ चाल में वो नहीं चलते थे। बस यही उनका दोष था, इसलिए दुनिया वालों ने बहुत सताया सभी संतों को, जितने योगी संत महापुरुष हुए। तो आज की मुरली में पहला ही प्रश्न है, क्या है? फर्स्ट लाइन मुरली की क्या है? मुरली की डेट 26, पहली मुरली 26 है, और ये दूसरी है, ये 24 होगी। क्या है पहला प्रश्न मुरली का? अपने को योगी समझते हो, और दूसरा प्रश्न, दूसरी लाइन बोल लिखी, योगी के सभी टाइटल्स का क्या मिल गए? ये पहले ही प्रश्न पे पढ़ना रुक जाना चाहिए। क्या अपने को क्या योगी समझते हो? बाबा ने कहा पहले भोगी जीवन था, अब योगी जीवन है। पहले लौकिक जीवन था, अब मर्जी वाजी जीवन है। क्या वास्तव में हम योगी हैं या भोगी हैं? भोगी अर्थात भोग विलास में डूबे हुए, भोगी अर्थात इंद्रिय सुख पर। ब्राह्मणों की अवस्था ऐसी है, इंद्रिय सुख को तो छोड़ा, अतिंद्रिय सुख भी नहीं मिल रहे हैं। अब बीच में है ना इंद्रिय सुख ना अतिंद्रिय सुख, दुविधा में दो गए। ना माया मिली ना राम, राम को पाने के लिए माया को छोड़ा, पर राम मिलकर भी अनमिला सा है, पाकर भी अनपाया सा है, क्योंकि बाकी चीजों में उलझ गए। तो आज का चिंतन का पहला बिंदु, योगी जीवन भोगी जीवन, इसके डिफरेंस निकालने, कंट्रास्ट। योगी जीवन क्या है और भोगी जीवन क्या है, और हम जो जी रहे वास्तव में योगी जीवन है क्या? भोगी अर्थात इंद्रियों द्वारा प्राप्त किए हुए भोग, आंख इंद्रिय है, विषय आंखों को टकराता है और इसमें सुख या दुख कुछ तो मिलता है, सुख जो मिला उसके प्रति आसक्ति, कान जीवा रस, क्या भोजन में डूबे हुए हैं या कोई गीत संगीत में डूबे हुए हैं या कोई दृश्य देखने में डूबे हुए, कोई रूप या स्पर्श, स्पर्श का सुख, अगर इन सब में सुख आता है, सुख प्राप्त होता है तो इसको कहा जाएगा भोग। साक्षी नहीं तो डैश है, साक्षी नहीं तो डैश है, ऑप्शन नो ऑप्शन, ऑप्शन एग्जाम में, ये तो मुरली का वाक्य है, ये सेकंड मुरली का लास्ट पेज पर, साक्षी भाव नहीं तो डैश है। सजा, पश्चाताप नहीं सजा। तो आज क्या लिखना है? लिखने से ज्यादा चिंतन करना है, लिखना बाद में, पहले चिंतन करना, सीधा लिखना चालू नहीं करना, सीधा लिखना नहीं, पहले सोचना है कि एक योगी क्या है, एक भोगी क्या है और वास्तव में हम कहाँ हैं। तो इस मुरली की शुरुआत ही इन दो प्रश्नों से हुई है। जैसे उनको टाइटल्स होते हैं, डॉक्टर्स को, इंजीनियर को, वकील को, मिलिट्री को और बनारस यूनिवर्सिटी में भिन्न भिन्न टाइटल्स, पांच उदाहरण दिए हैं, डॉक्टर्स के अलग अलग टाइटल्स, इंजीनियर्स के अलग अलग टाइटल्स, मिलिट्री में अलग अलग टाइटल्स दिए जाते हैं, वो मिलिट्री के अंदर ही है। जैसे बनारस यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइटल्स, जैसे वकील के अलग अलग टाइटल्स, वैसे तुम्हारे भी अलग अलग टाइटल्स हैं। तो इस मुरली में छह टाइटल्स की चर्चा है और बाबा ने कहा इन टाइटल्स को धारण करो। क्या वास्तव में ये हूं? वैसे तो टाइटल्स बहुत है, राजयोग के बहुत सारे नाम है, ये छह छोड़ के और कौन से नाम है राजयोग, इन छह की तो चर्चा मुरली में हुई है, इन छह को छोड़कर राजयोग किस किस नाम से जाना जाता है? बस ठीक है, ये मुझे कम लग रहा है, ज्यादा ये छोड़ के कौन से है? राजयोग को क्या कहा जाता है? प्रेम योग, भक्ति योग, अभ्यास योग, ज्ञान योग तो आ गया इसमें, ये छोड़कर वैराग्य योग, चिंतन योग, तपस्या योग और अतीन्द्रिय सुख योग, जो मुरलियों में टाइटल्स आए, चित परिचित से टाइटल्स, वो बताओ, अपने चिंतन से नया तैयार नहीं करो और संगठित योग, और चलो एक सेकंड नंबर का होमवर्क, राजयोग के अलग अलग भिन्न भिन्न नाम, बहुत सारे, चिंतन से तो बहुत सारे बना सकते हैं, क्रांति योग, क्रांति लाने वाला योग, विकराल योग, प्रलयंकारी योग, अखंड योग, अग्नि योग, ज्वालामुखी योग, तो ये विघ्न विनाशक योग, विकर्म विनाशक योग, कई सारे नाम दिए जा सकते हैं राजयोग को, पर इस मुरली में बाबा ने ये छह का वर्णन किया है और पूछा है कि ये सारे तुम्हारे टाइटल्स हैं, इन टाइटल्स को पूरा पूरा धारण करो। जो टाइटल है वो पूरा है, सबसे पहला टाइटल है सहज, क्या वास्तव में सहज योग हो रहा है? या मुश्किल योग है, मेहनत योग है, ये पहला। दूसरा कर्म योग, क्या कर्म करते हुए योग है, या जब योग करते हो तो फिर दूसरा वाला भूल जाता है। कर्म योगी तो बने पर ज्ञान योगी नहीं बने। तीसरा ज्ञान योगी, ज्ञान को धारण किया है, स्वरूप बने हो ज्ञान के। जो कल कहा था ज्ञान के सब्जेक्ट का टाइटल है सदर्शन चक्रधारी, नॉलेजफुल मास्टर ज्ञान सागर। बुद्धि योग, क्या बुद्धि का योग कहाँ है, राज योग, अर्थात सारी कर्मेंद्रियों कर्मेंद्रिया वश में है। इसी मुरली में बाबा ने कहा तीन कैटेगरी है, एक 108, एक 108 और एक 16108, कहाँ पर हो। जो सेकंड कैटेगरी है उनमें कभी सफलता कभी नहीं सफलता, और तीसरी की तो बात ही मत पूछना। तो राज योग अर्थात सारी कर्मेंद्रिया वश में है, ये खुद से बातें करनी। सहज योगी है, कर्म योगी है, बुद्धि योगी है, ज्ञान योगी है। ज्ञान योगी अर्थात निरंतर ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की चर्चा, ज्ञान एक ब्राह्मण का पवित्र कर्तव्य है, ज्ञान का दान करना आद्य कर्तव्य। श्रेष्ठतम कर्तव्य है समाज को ज्ञान देना है, क्योंकि समाज संसार अज्ञान में डूबा हुआ है। कल भी कहा था एक सन्यासी जो होता है उसके ऊपर क्या होती है, दायित्व होता है, इस ऋण है संसार का, समाज का ऋण है इस समाज को, क्योंकि हम समाज पर निर्भर है इसलिए ऋणी है, इसलिए इसे पूरा करने के लिए इस समाज को शिक्षित करना होगा, नई दिशा दिखानी होगी। इसलिए हम किसी एक छोटे से समाज के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए, विश्वग्राम के लिए है। फिर निरंतर योग, इसके लिए क्या कहा है, नींद के लिए कहा है, निद्रा योग। अपने नींद के समय को योग में परिवर्तन करो। ब्रह्मा का उदाहरण दिया है, मम्मा का उदाहरण दिया है। जब आत्मा जागृति में है तब थकावट नहीं है, आत्मा जब जागृत है तब थकावट नहीं है, इसलिए सोते हुए भी ऐसा अनुभव कि जैसे जाग रहे। बाबा ने इधर स्टैटिस्टिक्स गिनाया है, तुम्हारे पास है 24 घंटे तो 8 घंटे क्या, 8 घंटा क्या कैलकुलेशन दिया उसमें, कैलकुलेशन दिया है 8 घंटा आराम, तो ये आराम चले गए, फिर कितना बचा, 16 बचा, 16 में 3 घंटे का क्या, जो बुद्धि से ज्यादा काम करते हैं उनके लिए छुट्टी, और 1 घंटा बाबा के तरफ से छुट्टी, ग्रेस ग्रेस मार्क्स, तो कितना बचा 12। अब 12 में क्या पासिंग मार्क्स कितनी, 75%, तो कितने बच गए 8। ये 8 घंटा, 8 घंटे में ये 6 टाइटल्स के लिए 75% मार्क्स होने चाहिए, वैसे होना चाहिए पास विद ऑनर, पर पासिंग मार्क कितना है 75, तो एग्जाम्स में 50% के बजाय है। ये सेकंड टाइम बोला है बाबा ने, लास्ट संडे की मुरली में भी कहा था, जो होमवर्क दे रहे हैं 6 महीने का उसमें पासिंग मार्क है 75। कौन सा होमवर्क था लास्ट संडे की मुरली में 6 मास का, मैं और मेरा पन नहीं, मुक्त, मुक्त परिस्थितियां, मुक्त संकट परिस्थितियों से मुक्त, उसके लिए प्रभाव से मुक्त, तो उसके लिए 75% तक मुक्त होना। ये सेकेंड टाइम कहा है कि पासिंग मार्क है 75 और हम यहाँ 50% करके रखे। हाँ पहले 70 था, हाँ? तो बाबा ने कहा आठ घंटा इन में से किसी एक टाइटल में स्थित रहना, इन में से सभी टाइटल्स में स्थित रहना है, छह के छह। सहज योगी हो आठ घंटा, आठ घंटा निरंतर योग, जो ये तभी होगा जब पूरी नींद योग में कन्वर्ट हो जाए। रात को सो रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, ऊपर, जो गायन है ब्रह्मा से ब्राह्मण निकले, ये गायन है। तो सोते के लिए उदाहरण दिया है बाबा ने, जब सोते हो तो शरीर यहां छोड़ के ब्रह्म में जा रहे हो, और उठ रहे हो तब ब्रह्म से ब्राह्मण। मैं कहां से उठा, ब्रह्म से ब्राह्मण बना, अवतरित पार ब्रह्म से। तो ये गायन है। इसलिए आत्मा जब जागृति में है तो नींद की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को वैसे भी हमें नींद की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी आवश्यकता है आराम की, नींद की नहीं। नींद एक माध्यम है आराम लेने का। अगर वो आराम किसी और मार्ग से आ जाए तो नींद की जरूरत ही नहीं है। उसी तरह शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं है, वो आवश्यकता है प्राण ऊर्जा की। अगर वो प्राण ऊर्जा नॉन फूड सोर्स से आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इस धरती पर सभी लोग केवल सूर्य की किरणों से ही भोजन प्राप्त कर ले। इसलिए भोजन बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समुद्र में इतना भोजन है कि धरती का भोजन भी यदि समाप्त हो जाए तो वैज्ञानिकों का कहना है कि सी से फूड प्राप्त किया जा सकता है। जब समुद्र इतने जीवों को भोजन दे रहा है तो वहां से सब कुछ प्राप्त, ये भी संभव है। इसलिए प्रश्न भोजन का नहीं है, प्रश्न विकारों से मुक्ति का है। और व्यक्ति ऐसे आज वो दिन चले गए कि भूख से मरने वाले, अभी भोजन से मरने वालों की संख्या ज्यादा है। फूड ओवर ईटिंग की समस्या ज्यादा है, ओबेसिटी की समस्या ज्यादा है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस की संख्या ज्यादा है, समस्या ज्यादा है। तो बाबा ने कहा इन आठ घंटों में, इन सभी में स्थित हो जाओ, तो ये तभी होगा जब प्रकृति में जाएंगे, ज्ञान का चिंतन करेंगे तो ज्ञान योगी, मुरलियां पढ़ोगे तो ज्ञान योगी, मुरलियों को धारण करोगे तो ज्ञान योगी, बुद्धि और कहीं भटकने नहीं देना तो बुद्धि योगी, राजयोगी अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, ये तब होगा जब सहज होगा ये सारा। ये उससे भी ऊपर की स्टेज है, सहज योगी, स्वतः योगी और निरंतर। निरंतर अर्थात नींद का समय भी योग का समय बन जाए। तो सोने की विधि, उस दिन भी कहा था ना, नींद आग बंद करने से नहीं आती, नेट बंद करने से आती है। कैसे सो रहे, किस भाव दशा में सो रहे, सोने का सोते समय का अंतिम संकल्प ही उठते समय का प्रथम संकल्प है। टीवी देखते देखते, बात करते करते, मोबाइल पर, तो उठते ही जिसके साथ बात करते करते सो रहे, उठते ही सबसे पहले उसकी याद आती है अपने आप। मम्मा बाबा दोनों का उदाहरण दिया है, नंबर वन और नंबर टू क्यों बने, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, नींद के समय को भी योग के समय में कन्वर्ट कर दिया, तब कहीं जाके आठ घंटा होगा वो, नहीं तो पूरे दिन भर तो केवल हल्की सी और धुंधली सी याद रहती है। ये सब ज्ञान योग, ये सब सुबह मुरली तक, मुरली के बाद तक ठीक है, बाद में सब खलास, बाद में तो तलवार है हाथ में लड़ाई के लिए। किससे लड़ाई, इस परिवार से। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। तो एक तो आठ घंटा सो जाओ, कितना बचा, 16। ट्वेल्थ से कैलकुलेशन आगे का चालू किया, ये जो क्या निकाल दिया, 4। हाँ वो पौना क्या है, वो बाबा से ही पूछना पड़ेगा। उसकी लीला क्या है, वो तो भीष्म का उदाहरण दिया ना। क्या कह रहा है भीष्म कि मुझे खुद समझ नहीं रहा है तुम्हारी लीला क्या है। पग पग पर पांडवों के साथ श्री कृष्ण रहे, पर पांडव दुखों से मुक्त नहीं हुए। क्या है ये? यहां पर आठ वो पावना गोला और सीधा फिर आठ घंटे का कैलकुलेशन दिया। वो मुरली क्लास और नाश्ता और भोजन, तीन टाइम का भोजन, वो सब तो निरंतर। तो बाबा ने इस मुरली में क्या कहा है, केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी टाइटल मिल गया इसलिए खुश नहीं हो जाना है, पर ये सारे जो टाइटल्स मिले हैं इनको पूरा पूरा धारण करो। लास्ट स्टेटमेंट क्या है मुरली का, अच्छा से पहले इसको क्या करो, पूरा पूरा धारण करो तो कहा जाएगा। तो ये है सबसे पहली मुरली। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के टाइटल्स, पासिंग मार्क्स 75%, और इसको पूरा पूरा धारण करो तो इस पर आज चिंतन करना। तो सबसे पहला काम आज का, योगी और भोगी जीवन में अंतर क्या है, इसका पहले से एक पीडीएफ बना हुआ है, वो देखना नहीं है, ठीक है ना। इस पर पहले से किसी ने लिख के रखा है, नया फ्रेश चिंतन करना है एक। दूसरा, राजयोग के क्या क्या नाम है, जितने बना सकते हो सोच सकते हो वो सोचो और लिखो। तीसरा, ये जो छह टाइटल्स दिए हैं मुरली में, अब इनको कैसे धारण करें, कौन सा मिसिंग है। राजयोग वाला मिसिंग है, केवल योगी कहलाए जाओगे अगर एक कर्मेंद्रिया भी धोखा देती है तो, राजयोगी नहीं। राजयोगी अर्थात सभी कर्मेंद्रिया वश में, भक्ति में केवल कर्मेंद्रिया नहीं, कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया पांच 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 ऐसे गिनाया है, 10 टोटल। कर्मयोगी है या केवल दिन रात मुरलिया ही पढ़ते रहते हैं, सेवा से छुट्टी ले रखी है, केवल मुरलिया नहीं पढ़ते रहना है, अपनी ड्यूटी भी करनी है, कर्म होना चाहिए और निरंतर अर्थात नींद से संबंधित निद्रा योग सहज होना चाहिए। बुद्धि कहां कहां जाती है उसकी स्टडी करनी है, उसको रोकना नहीं, उसका दमन नहीं करना है। कहां जाती है, और दो ही जगह जाती है, एक अतीत एक भविष्य, बस ये दो ही जगह है उसके जाने के। उसको एक ही स्थान बिल्कुल पसंद नहीं है, वर्तमान। उसका उसे क्या पसंद है, थोड़ी देर बैठे रहे तो खो जाते, कहां पर, अतीत की यादों में अपने दुख दर्दों में डूब जाती है, या फिर भविष्य की चिंता टेंशन वरी, मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा, एक अविद्या के संसार में बुद्धि रमन करती रहती है दिन रात। सत्य में नहीं है वो, अविद्या में, एक अंधकार की अवस्था, वर्तमान उसे रहना नहीं है। इसलिए प्रकृति में जाने का एक फायदा यह भी है कि हम प्रकृति में जब जाते हैं तो वर्तमान में रहते हैं, एक। दूसरा, एक्सरसाइज करने का एक फायदा क्या है, जिस समय एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय वो दर्द है शरीर में। एक योद्धा होता है ना, लंबे समय अगर कोई युद्ध ना हो ना, मजा नहीं आता है, जब तक खून नहीं निकले कहीं से। एक खिलाड़ी होता है, उसके शरीर में 24 घंटे दर्द बना रहता है और वो आवश्यक है, निरंतर निरंतर के लिए ये सब आवश्यक है, प्रेजेंट में रहने के लिए। एक्सरसाइज जब कर रहे तो और यहां वहां ज्यादा बुद्धि नहीं जाती, अगर एग्रेसिव पूरा मन लगा के कर रहे तो वो जो दर्द है उस दर्द, ये सेकंड। तीसरा, श्वास को देखना, श्वास आ रहा है जा रहा है उसको कंट्रोल नहीं करना, प्राणायाम नहीं, केवल श्वास को देखते रहना साक्षी भाव से। तो सभी आंखें बंद, स्थिर, सारा ध्यान ऊपर वाले होंठ के ऊपर और नासिका के नीचे, श्वास आ रहा है और जा रहा है, केवल इस श्वास को देखेंगे। बाई नासिका से आ रहा है, दाई नासिका से आ रहा है, जिधर से जो आ रहा है उसको आने दो, उसको वश में करने की कोशिश नहीं करनी है। धीमा है, तेज है, गहरा है, उछला है, उथला है या धीम गहरा है, छोटा है या लंबा है, जैसा है वैसे उसे देखने की कोशिश। और उसके साथ कुछ भी नहीं जोड़ना है, 1 2 3 4 1 2 5 6, ना नंबर को जोड़ना है, ना शिव बाबा को जोड़ना है, ना किसी शब्द को, ना किसी आकृति को, ना किसी रूप को, केवल शुद्ध श्वास। स्टार्ट, 1 मिनट। श्वास पर पहरा लगा दो, एक भी श्वास बिना जानकारी के ना आए, एक भी श्वास बिना जानकारी के ना जाए। कड़ा पहरा, सारा ध्यान नासिका के नीचे, होठों के ऊपर। एक भी श्वास छूटने ना पाए। स्टॉप। 1 मिनट में कहां कहां बुद्धि गई, केवल श्वास की तरफ। 1 मिनट में तो 1 मिनट तो हम रोक सके, जहां लगाना चाहे वहां लगा सके, पर देखेंगे कि 1 मिनट भी कितना मुश्किल है। 1 मिनट में भी भविष्य में चली गई और 1 मिनट में भी पास्ट। इससे ही पता चलता है मन कितना चंचल है। हम है राजऋषि, हम है राजयोगी, जब चाहे वहां चाहे मन को लगा सको, पर 1 मिनट भी कितना मुश्किल है। ये उसका प्रैक्टिकल उदाहरण है कि बुद्धि ठहरती नहीं है, इसलिए ये अभ्यास बीच बीच में करते रहना है। श्वास आ रहा है, जा रहा है, क्योंकि श्वास को देखते देखते विकारों को देखने लगेंगे, क्योंकि श्वास सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। एक अवस्था वो है कि योगी अपने श्वास को देखते देखते पूरे शरीर को देख लेता है, ऊपर से नीचे और नीचे से देख ऊपर। धीरे धीरे वो अवस्था है योगी की कि एक श्वास में पूरे शरीर में केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे अनुभव हो जाती है। एक ही श्वास में वो अशरीरीपन का अनुभव कर लेता है, परंतु बहुत गहरा अभ्यास चाहिए, लंबा अभ्यास चाहिए। और ये अभ्यास है वर्तमान में जीने का। अभी ये श्वास सत्य है, ये कोई कल्पना का अभ्यास नहीं है कि शिव बाबा या पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिविटी जा रही है, ये कल्पना है, या ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा जा रही है, ये कल्पना है। यहाँ कल्पना नहीं है, यहाँ ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बीके नॉन बीके का कोई लेना देना नहीं है। श्वास यूनिवर्सल है, श्वास आई और श्वास गया, तो श्वास को हमने देखा और उसके साथ किसी भी आलंबन को नहीं जोड़ा, केवल श्वास को देखा। तो ये है वर्तमान में जीना, ये अभ्यास भी बीच बीच में करते रहना। और जैसे कंट्रोल नहीं करना, प्राणायाम नहीं करना, मैनिपुलेट नहीं करना, केवल जो है वो है। क्रोध में आ रहे, एकदम क्रोध आ गया, आवेश आ गया, उस समय बैठ के सीधा श्वास को देखो, श्वास की गति बदल चुकी है। मन में लोभ जागा, श्वास की गति बदल चुकी, वासना जगी, तुरंत श्वास की गति बदली, अंदर विकार जगा, श्वास बदला, विकार और श्वास जुड़े हुए हैं। श्वास को देखते देखते धीरे धीरे विकार दिखने लगेंगे और धीरे धीरे मन शांत होते जाएगा। आवेश में आ गए, ईर्ष्या जगी, एकदम आग बन करके देख लो, उस समय श्वास गति बदल चुकी है, सामान्य गति नहीं रही, वासना जगी है, श्वास बदल चुका है, अहंकार जगा है, जिद सिद्ध कर रहे हैं, श्वास को देखो बदल चुका है। तो जब विकार नहीं जगे है तब श्वास को देखने का अभ्यास। जब मन शांत है तब देखो। और कभी एक अवस्था आएगी कि श्वास बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, इतना शांत हो गया, पर फिर थोड़ा उसको फास्ट करके वापस उसकी तरफ ध्यान देना है। तो ये अभ्यास करते रहना है, इसको कम से कम 2 मिनट तक ले जाना है, 2 मिनट केवल श्वास, एक भी श्वास छूटने ना पाए, इतना कड़ा पहरा लगा देना उस पर, ये आया ये गया, बोलना नहीं है ये आ रहा है जा रहा है, केवल ध्यान आ रहा है जा रहा है उसकी तरफ ध्यान है। और देखेंगे एक ही मिनट तक पहुंचना कितना कठिन है, क्योंकि मन भविष्य में जाता है पास्ट में जाता है, भविष्य में जाता है पास्ट में जाता है, वर्तमान में ठहरता ही नहीं है। तो ये तीसरा अभ्यास है, पहला अभ्यास प्रकृति, दूसरा अभ्यास एक्सरसाइज, और तीसरा अभ्यास श्वास को देखना। ये 3 अभ्यास। दूसरी मुरली, चेहरा, चेहरा कहाँ चला गया, ये चेहरा है अभी बना। तो बाबा ने कहा 4 लाइनें देख रहे, ब्राह्मणों की जन्म पत्री, उसमें है हस्त लकीर, इसमें है ये 4, तो 4 चीजें देखी जाती है। सबसे पहली कौन सी चीज देखी जाती है, लाइन कितनी क्लियर है, दूसरी देखते हैं, इधर इधर क्लियर कितनी है, दूसरी निर्विघ्न स्मृति, स्मृति का क्या, निर्विघ्न एक है आयु, स्मृति की आयु आगे क्या, कितनी छोटी या लंबी, ये चाहिए यहाँ पर, छोटी और लंबी, ये स्मृति नहीं है। और तीसरा तकदीरवान कितना है, किसका भी भविष्य देख के क्या देखते हैं कि ये ब्राह्मण ये तकदीरवान है या नहीं है, ये भाग्यवान होगा या नहीं होगा, जैसे कोई घराने में 3-4 रानियां हैं, उनके 3-4 पुत्र हैं हर एक के, और जन्म पत्री देख के ही वो क्या बता देते हैं ज्योतिष की, ये जो है ये बेटा पूरे कुल का विनाश करेगा। हाँ पहले ही बता देते कि ये पूरे कुल का विनाश करेगा। हाँ जन्म पत्री की एक दूसरी मुरली है, ये तो इस मुरली का है, हाँ वो अलग। तो सबसे पहला बताया क्या, सबसे पहला क्लियर और विशाल, दूसरा निर्विघ्न कितने रहे, तीसरा छोटी लाइन है या लंबी है या छोटी लाइन है, और फिर तकदीरवान। और ये सब अगर करना है तो उसके लिए किस में स्थित हो जाओ, और 4 बातें, पहला तो जो दिल तख्त पर विराजमान है वही इसको देख सकते हैं, दूसरा जो स्मृति का तिलकधारी है वही देख सकते हैं, तीसरा जो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ज्ञान पावरफुल और ज्ञान स्वरूप है की स्थिति में है, और चौथा जो ऑलमाइटी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में स्थित है। ये 4 बातें होंगी तो ही ये देख सकेंगे, नहीं तो नहीं। कौन सी 4 बातें, सबसे पहला स्मृति के तिलकधारी मस्तक पर, दूसरा दिल तख्त नशीन है वो भगवान के हृदय सिंहासन पर बैठ कर ये देखा जा सकता है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन, और स्थिति कौन सी ज्ञान स्वरूप और पावरफुल, ये स्थिति, ये 4 चीजें होगी। तो बाबा ने कहा जो लौकिक वाले होते हैं अथॉरिटी वाले उनमें इतनी पावर्स होती है, इतनी सिद्धियां होती है, तो तुम में कितनी सिद्धियां होनी चाहिए, तो इस मुरली में 12 सिद्धियां गिनाई है। क्या, इस मुरली में 12 सिद्धियां गिनाई है, ये खाली नंबरिंग है इधर। सबसे पहली सिद्धि, तुम किसी को भी क्या कर सकते हो, निरोगी। अभी एक एक लोकेशन पर डालते जाओ, डाल दिया ना, हम बाद में पूछेंगे, सुनते सुनते लोकेशन भी नहीं बता रहे और वो भी नहीं बता रहे, पर आप अपने मन के अंदर ही लोकेशन में डाल के एक पिक्चर बना के विजुलाइज करके उसको याद कर लो, ठीक है। तो सबसे पहला सदा निरोगी बनाने के लिए, ये तुम्हारे पास सिद्धि कौन सी प्राप्त है, हम तुम्हें किसी को भी निरोगी बना सकते हो, ये तुम्हारी सिद्धि है। दूसरी सिद्धि तुम्हारे पास क्या है, तुम प्रकृति के पांचों तत्वों को अपने वश में कर सकते हो। तीसरा, तुम्हारे पास वो सिद्धि है कि कोई कितना भी निर्धन है, दुखी है, अशांत है, उसको धनवान बना सकते हो, सुखी बना सकते हो। चौथा, तुम्हारे पास सिद्धि कौन सी प्राप्त है, जो जो निर्बल है उसको महाबलवान बना सकते हो, ये तुम्हारे पास सिद्धि है। पांचवी सिद्धि तुम्हारे पास कौन सी है, अपने संकल्पों को वश में करने की सिद्धि। छठवी सिद्धि तुम्हारे पास कौन सी है, तुम महाभूतों को, पांच भूतों को अपने वश में कर सकते हो, ये सिद्धि। सातवीं सिद्धि तुम्हारे पास कौन सी है, नयनहीन जो है उनको त्रिनेत्री बना सकते हो। आठवीं सिद्धि तुम्हारे पास कौन सी है, कोई भी परिस्थिति के वश जो आत्मा जो मूर्छित है उसको सुरजित कर सकते हो। नौवीं सिद्धि तुम्हारे पास कौन सी है, भटकती आत्माओं को ठिकाने पे लगा सकते हो। दसवीं सिद्धि, जो किसी की भी आयु को लंबी कर सकते हो और अकाले मृत्यु से छुड़ा सकते हो, ग्यारहवीं सिद्धि। और बारहवीं सिद्धि, राज्य भाग या तख्त किसी को भी प्राप्त करा सकते हो, दे सकते हो। यह है बारह सिद्धि। इसमें वैसे कुछ लिखा नहीं है तो मिटाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो बाबा ने कहा इन सभी सिद्धियों को यूज करो, पहला। दूसरा, यूज करते समय मैंपन ना आए। तीसरा, यूज करो परंतु साक्षी होकर, साक्षी नहीं तो सजा है। ये बातें बताई, ये सिद्धियों का अभिमान ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए कि मैं ये सब कर सकता हूं। जैसे ये सोचा गए, उसी दिन से चले गए। जैसे यहां पे एक माउंट में एक नाई की दुकान है, वहां पे एक व्यक्ति थे, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया कुछ समय पहले, वो भी हॉस्पिटल में ही शरीर छोड़ा। तो वो जो नाई थे, तो वो जो है ना, कई लोगों को ठीक कर देते थे, मतलब किसी को बैक का प्रॉब्लम है कुछ भी। वो मुस्लिम एक भाई थे, तो वो ऐसा ऊपर नीचे करते थे और ठीक कर देते थे। तो कई बार हमने पूछा ये कैसे करते हो, बोले बस खुदा का दिया है। कुछ लेते हो पैसे, नहीं कुछ नहीं, वो लूंगा तो खत्म हो जाएगा बोलते। कई बार मिले पर, और देखा है कि लोग ठीक भी हुए उनसे, बहुत सारे जो कहीं ठीक नहीं हुए, न्यूरो स्पाइन सर्जन से उनके पास जाके ठीक हुए। करते क्या है, उल्टा पुल्टा करते थे बस थोड़ा सा, हाँ इधर भी आते थे ना मोटे। तो सबसे पहला डाल दो शांति स्तंभ। शांति स्तंभ पर एक क्लिनिक खुला है। शांति स्तंभ पर क्या खोल दिया, एक क्लिनिक, जहां पर पेशेंट आ रहे हैं, डॉक्टर है हम सब मतलब, और वहां पे लोग आ रहे हैं। तो हमारे पास पहली सिद्धि कौन सी है, आत्माओं को निरोगी बनाने की सिद्धि। दूसरा, हिस्ट्री हॉल में जो तस्वीरें लगी है, सोचो ये पांच तत्वों की तस्वीरें है और ये सारी तस्वीरें हमारे वश में है। तो प्रकृति के पांचों तत्वों को वश करने की सिद्धि। तो कहां डाल दिया हमने इस पॉइंट को, लोकेशन नंबर टू हमारा है हिस्ट्री हॉल, लोकेशन नंबर थ्री बाबा के कमरा में। क्या जो वहां पर इतने पैसे हमारे पास आ गए कि दुखियों की, निर्धनों की लाइन लग गई है, और हम उसको क्या बांट रहे हैं, धन बांट रहे हैं। मुख्य पॉइंट तो धन का है, जो निर्धन है उसको धनवान बना रहे। उसके बाद में कुटिया में हम क्या कर रहे हैं, एकदम निर्बल आत्माएं आ रही है, स्पिरिचुअल जिम, तो कुटिया में जिम, तो वहां पर आत्माओं को इतना शक्तिशाली बन रहा है, महाबलवान बनकर आत्माएं बाहर निकल रही है। उधर से सोचो ये कुटिया उधर से आ रही है, बिल्कुल लुकड़े ऐसे ऐसे एकदम पतले दुबले, और यहां से ऐसे ताकतवर बन के निकल रही है इस गेट से। तो ये पॉइंट को हमने कहां डाल दिया, कुटिया में। फिर आ जाओ आंगन में, क्या डाल दिया, जो संकल्प करना चाहो वो संकल्प, संकल्पों को वश में करने की सिद्धि। तो संकल्प वहां पे खड़े हुए हैं, वो कुटिया अपना आंगन है ना, वहां का वो क्या कहते हैं उसको, चौबारा, वो कोर्टयार्ड का वो जो बैठने का है, और वहां जो नए नए लोग आ रहे हैं, हम खाली संकल्प कर रहे हैं कि इसको टचिंग हो जाए, हो गई। तो संकल्पों को वश में करने की सिद्धि। अपना छठवां लोकेशन है ये जगह जहां हम अभी बैठे हैं। तो यहां पर पांच महाभूतों को वश में करने की सिद्धि, यहां आ गए और सारे विकार पराजित। ओम शांति भवन में योग कराने का टाइम आज किसका है? हमारा। तो हम वहां बैठे हैं संदली पर, और वहां पे सारे कौन बैठे हुए? नयनहीन, और जिस जिसको दृष्टि दे रहे हैं देखो उसको नई नई आंखें खुल रही, आंखें आ रही, तीसरा नेत्र सबका खुलते जा रहा है, जिस जिसको देखा लाइट खुल रही, लाइट सारे हॉल किससे भर गया? त्रिनेत्रियों से। तो कितनी आंखें हो गई? अगर 100 लोग बैठे हैं तो 300 आंखें। फिर आ जाओ बाजू के कमरे में। अगली सिद्धि कौन सी है? जो यहां पे मूर्छित बेहोश स्ट्रेचर पर लेके आ रहे आत्माओं को, और जैसे अंदर गए जाग गए, स्ट्रेचर से अंदर गए बेहोश, और वहां अंदर जाते ही एकदम जाग गए। फिर भटकते भटकते आत्माओं को स्थान ही नहीं मिल रहा था, लाइब्रेरी पहुंच गए, किताबें थी, किताबें देखा और थस्ता ठिकाना मिल गया। हाँ अच्छा ये है। एक भाई है जिसको डस्टबिन में हमारे नहीं ये कौन से भाई एडमिट थे ना हॉस्पिटल में, 5-6 साल एडमिट जो थे, नहीं नहीं वो नीचे जनरल वार्ड में वो जो एडमिट, राम रामदयाल भाई, हाँ रामदयाल भाई जी ज्ञान में कैसे आए थे? हाँ बटले भाई जी। तो रामदयाल भाई सुनाते थे कि वो जा रहे थे, एक बार डस्टबिन में एक वो मिला, कोर्स का बुक था ना उसका एक पेपर, तो वो देखा उन्होंने, ये क्या है? आत्मा परमात्मा का वो चित्र था उसमें। वो ढूंढते ढूंढते सेंटर पहुंचे थे, तब ज्ञान में आए, सर्वोदय मूवमेंट से जुड़े हुए थे विनोबा भावे के। कहां पहुंचे हम? पॉइंट नंबर 8। 8 नंबर क्या है? नहीं लाइब्रेरी, 9 नंबर मूर्छित, मूर्छित नहीं भटके हुए को रहा। फिर 10 नंबर आयु लंबी, तो जिनको अपनी आयु बढ़ानी है कहाँ पे योग करो? मेडिटेशन हॉल में। मेडिटेशन हॉल में हमारा नेक्स्ट लोकेशन है, मेडिटेशन हॉल में गए आयु बढ़ गई, और फिर डिस्पेंसरी में तो काम ही वो है उनका, अकाल मृत्यु से बचाने वाले, अनटाइमली डेथ। अकाल मृत्यु होना ये बहुत बड़ी बात है, राम राज्य में दिखाए है अकाल मृत्यु हुई तो चिंतन वो लेके आते, क्या हुआ हे राम तुम्हारे राज्य में कोई पाप हो रहा है? अकाल मृत्यु हुई कैसे? जरूर कोई पाप हो रहा है। फिर पता चलता है अच्छा एक ब्राह्मण वेद पढ़ रहा है, तो वो उस समय ये श्री राम के विरोध में ये बात सुनाई जाती है कि राम ने भी उसको एक शूद्र को सजा दी थी। हाँ तो ये पर उस समय की प्रथा ही वो थी, ये भी एक लोग दिखाते हैं कि उनको अधिकार नहीं था शूद्र। उसके बाद में 12वां ऊपर डाइनिंग में क्या ताज तख्त राज्य भाग दे रहे, वहां जाओ भोजन खाओ और राज्य भाग प्राप्त करो। तो ये कितने हो गए? 12। कौन कौन सी सिद्धि है फिर से बताओ? पहला, पहली सिद्धि, अब वो वाला लोकेशंस को अपने मन में रखना, वो सुनाना नहीं। पहला निरोगी, सदा निरोगी बनने की सिद्धि। दूसरा भूतों को 5 तत्वों को वश में करने की सिद्धि। तीसरा निर्धन को धनवान बनाने की सिद्धि, निर्बल को बलवान बनाने की सिद्धि, हर संकल्प को वश में करने की सिद्धि, भूतों को वश में करने की सिद्धि, नयनहीन को नेत्र देने की सिद्धि, मूर्छित को सुरजित करने की सिद्धि, भटके हुए को ठिकाने देने की सिद्धि, आयु लंबी करने की सिद्धि, अकाल मृत्यु से बचाने की सिद्धि, और राज्य भाग देने की सिद्धि। ये सब सिद्धियां तुम्हारे पास है, तुम सिद्धि स्वरूप हो, सर्व सिद्धियां तुम्हारे वश में है। अब हाँ अब बोलो, कोई कंप्लेंट? घुटने में दर्द किसी के? निरोगी करने की सिद्धि तुम्हारे पास है। कोई क्रोध लोभ कुछ सता रहा है? सारे भूतों को वश में करने की सिद्धि। बारिश क्यों ज्यादा आ रही है? 5 तत्वों को वश में करने की सिद्धि तुम्हारे पास है। कोई कंप्लेंट बची है निखिलेश भाई आपकी, कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती, पॉइंट्स हमको याद नहीं रखते रहते हैं? तुम महाबलवान हो, तुम महाधनवान हो। तो ये सब सिद्धियां तुम्हारे पास है। इस मुरली में और एक पॉइंट है, वो सहारे वाला। ये सहारे को छोड़ के किनारा कर देते हो तो कहां से कितना टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। भगवान को छोड़ के अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, हजार भुजाओं वाला खड़ा है, फिर भी तुम दो भुजाओं वाले के पास जाते हो, कारण बताओ क्यों? ऐसा प्रश्न है, मुरली के महावाक्य है ये। हजार भुजा वाला खड़ा है, फिर भी जाते हो तुम दो भुजा वाले के पास, कारण बताओ क्यों? ये दिखता ही नहीं, बोलता भी नहीं, और बोलता है समझ में नहीं आता है, और जो बोलता है उसके ये महावाक्य तो समझ नहीं आते, कई बार पढ़ने पड़ते तब कहीं, और इतना टाइम नहीं है एक मुरली को पांच बार पढ़ने के लिए, इतना चिंतन करने के लिए, काम भी तो उसने इतना दे दिया है, बाकी ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, तो वही भिखारी भिखारी को क्या दे सकता है। हाँ, और वही वो लास्ट में करामत खैर खुदाई, इसका अर्थ हमने ढूंढने की कोशिश की, गूगल में डाला तो जितने आए वो सब यही मुरली आई। अलग अलग जगह ढूंढने की कोशिश की, उर्दू डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश, कहीं मिल जाए ये, उसमें भी नहीं दिखा। करामत खैर खुदाई, ये अजीबो गरीबी लेके आया है बाबा। और कहता क्या है कि अगर मैपन में आकर कोई सिद्धि को यूज किया तो कहावत है ना, कहां है ये कहावत, हमें तो दिखी नहीं कहीं। करामत खैर वो भी ढूंढा, जहां पे भी ढूंढा यही मुरली निकली। इसकी बहुत सी बातें ऐसी होती है, अर्थात श्रेष्ठ पद के बजाय सजा के भागी बन जाएंगे। हाँ, कुछ बोलना है आपको? तो क्या क्या करना है आज? पहला काम योगी भोगी जीवन के डिफरेंसेस, दूसरा काम राजयोग के क्या क्या नाम है, तीसरा तीसरा क्या, तीसरा वो छह पॉइंट्स, उसका अच्छा डायग्राम है, वो पिक्चर है, वो पिक्चर बनाना, और फिर छठवा ये बारह सिद्धियां याद कर लेना। याद क्या करना, याद हो चुकी है नहीं हुई है तो कर लेना, विधि से या यूज करो, विधि से यूज करो, साक्षी होकर यूज करो, मैपन ना हो यूज करते समय, पर यूज करना है उसको, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, ठीक है ना? तो ये सिद्धियां काम करेगी, नहीं तो खाली सिद्धियां प्राप्त हो गई, सिद्धियां प्राप्त हो गई से कुछ नहीं होता है, वरदान मिल गया, वरदान मिल गया, अब वरदान पे काम करो, उसके ऊपर रोज प्रैक्टिस करनी है, तो ये एक और सिद्धियां हो गया, बस इतना आज का काम है, ज्यादा नहीं है ना। 75% मार्किंग पासिंग मार्क करना है क्या? भगवान ने बोला है, खुद ही बोल, अच्छा तब बोला था, अभी 80 चाहिए पासिंग।
ओम शांति। कल हम थोड़ा स्पीचलेस हो गए थे क्योंकि ट्रॉफी मिली, उतनी खुशी हुई उसके लिए। तो आज हमने भाई जी के लिए कुछ, हाँ आज हमने कुछ भाई जी के लिए लिखा है, जो हमने अनुभव किया, लिखना आता नहीं है लेकिन तो भी लिखा है, कुछ आगे पीछे हो तो सॉरी। कैसे करे शुक्रिया आपका भाई जी, हम कैसे करे शुक्रिया, मुरलियों की पुकार सुनकर आपने उनको अलमारियों की जंजीरों से मुक्त कराया आपने, बचपन की पढ़ाई के सुहावने एहसास को जगाया आपने, भूल गए थे होमवर्क करना वापस याद दिलाया आपने। बुद्धि जो सुषुप्त हो गई थी उसको दौड़ना उड़ना सिखाया आपने, मोबाइल में पढ़ना और लिखना भुलाकर बुक और नोटबुक में पढ़ना लिखना सिखाया आपने, बाप दादा की मुरलियों से खेलना उसे पीना और उसमें जीना सिखाया आपने, कैसे करे शुक्रिया आपका। है और है कंटिन्यू प्रकृति माँ के एहसास को फील कराना सिखाया आपने, भोजन तो कर रहे थे लेकिन भोजन में प्यार भरकर करना सिखाया आपने, क्या खाना क्या नहीं खाना और क्या पीना क्या नहीं पीना ये बताया आपने, पनीर और दूध मैदा छुड़ाया आपने, चल रहे थे जीवन में सूक्ष्म सूक्ष्म पाप करते थे उससे छुड़ाया आपने, चार धाम तो कर रहे थे चारों धामों में जीना सिखाया आपने, साकार मुरली को पीना सिखाया आपने, लोकेशन पे घूमना विश्व परिवहन करना सिखाया आपने, पवित्रता का मंत्र दिया शिव बाबा ने उसको कैसे जीवन में लाए उसको सूक्ष्म रूप बताया आपने, ऐसे शिव बाबा के अति लाडले बच्चे पवित्र आत्मा का कैसे करें हम शुक्रिया, धन्यवाद, ओम शांति। और एक बताना था, हम जब से होमवर्क कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो छोटे बच्चे होते हैं ना, कैसे रोज नोट पेन लेके गोल बीच में बैठते हैं और पूरा फैला कर बैठते हैं, ऐसे हम होमवर्क कर रहे थे जब ये ट्रॉफी मिली, बाद में वो भी अच्छा लगता था, जैसे आप सबको अपना याद होगा कि जैसे हम टीचर को होमवर्क देते ड्राइंग देते तो हम कैसे करके टीचर को दिखाने जाते थे कि देखो हमने किया, वैसे हम भी भाई जी को वो करके ड्राइंग करके दिखाते थे, ऐसा अनुभव होता था हम भी छोटे बच्चे और सर को टीचर को दिखा रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। और ये जो मैंने सुशील भाई को बताया कि जो एग्जाम लास्ट एग्जाम थी ना जो MAT 4 उसका हमने एग्जाम जंगल में जाके प्रकृति के बीच में दिया और प्रकृति को बोला पढ़ा कुछ नहीं है पास कर देना और सच में पास हो गए, अफ्रीका के जंगलों में जाके एग्जाम दिया था शेरनी सफारी। अच्छा ओम शांति।
कभी हादसों की डगर मिले कभी मुश्किलों का सफर मिले कभी हादसों की डगर मिले कभी मुश्किलों का सफर मिले ये चराग है मेरी राह के मुझे मंजिलों की तलाश है मुझे मंजिलों की तलाश है साथ दे मैं रुकूं जहां कोई हाथ दे मेरी मंजिलें अभी दूर हैं मुझे रास्तों की तलाश है मुझे रास्तों की तलाश है मुझे रास्तों की तलाश है।